नमः राम भद्राय राम चंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। भगवान का भजन करो, कपट और जंजाल छोड़ करके भगवान का भजन करो। अब कई बार भजन में भी कपट आ जाता है, तो भजन का कपट क्या होता है? तो जैसे अभी बात चली कि भजन साधन से भी कोई न कोई इच्छा है, हे भगवान हम आपका इतना नाम लेते हैं, आप हमारा ये काम कर दो। तो भगवान से भी लौकिक इच्छा करके भजन करने की बात करनी ये कपट है। भगवान ने हमको लौकिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मानव शरीर में नहीं भेजा है, भजन करने के लिए भेजा है। गौतम नारी ने जब भगवान का स्पर्श प्राप्त किया तो उसको अपने पति लोक के अंदर पति की प्राप्ति हो गई। ये पति लोक में जो पति की प्राप्ति होती है ये लौकिक प्राप्ति नहीं है, लौकिक शरीर नहीं होता। स्त्री के लिए पति लोक में वो जाती है तो कैसे रहती है? तो भागवत में लिखा है कि जैसे बैकुंठ में लक्ष्मी जी रहती है, ऐसे वो स्त्री लक्ष्मी के समान पति लोक में रहती है और उसके पति है वो पति भगवान विष्णु के रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो शरीर यहां पति का मिला वही शरीर उसको वहां मिलता है, ऐसा नहीं है। फिर तो वो मुक्ति कहां हुई? वो तो यही था, यही मिला, ये ऐसा ही शरीर मिला, मुक्ति थोड़ी हुई। राम जी महाराज और लक्ष्मण जी दोनों विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ के लिए प्रस्थान करते हैं। बीच में गंगा जी आई। अब इस गंगा का पूरा प्रसंग सुनाया कि ये गंगा कैसे आई, कैसे शंकर जी ने धारण की, सब कथा सुनाई और सब चलते चलते विदेह नगर में आ गए। अब इतना सुंदर वो जनक पुरी विदेह नगर, इतना सुंदर उसको देख करके राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। कहीं कुआ है, कहीं नदी है, कहीं बावड़ी है, सबका बड़ा स्वच्छ जल है। सलिल सुधासम मणि सोपाना और मणियों के वहां पर ये पेड़ियां बनी हुई है और वहां फूल खिले हुए हैं, जहां पर भौरे बहुत सुंदर गुंजन कर रहे हैं। तीन प्रकार की हवा चलती है, शीतल मंद और सुगंध, ये वायु के गुण है। सुगंध वायु चले और साय साय करती नहीं जैसे इन दिनों में चल रही है, ऐसी भी नहीं, मंद चले और सुहावनी चले। तो मंद सुगंध और शीतल तीन प्रकार से वायु बह रही थी। बगीचे बड़े हरे भरे थे। राम जी महाराज का मन ऐसा लुब्ध हुआ, अरे इतने सुंदर बगीचे, बनैन भरनत नगर निकाई, जहां जाए मन तय लो भाई, जहां मन जाता है वहीं पर मन, अरे इतना सुंदर बगीचा, नदी, मकान, सड़कें, चारू बाजार, बाजार बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, वो धनिक बनिक बर धनद समाना, ऐसे ऐसे धनी जैसे कुबेर हो, उनके दुकानों पर जाओ किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। बड़े सुंदर दरवाजे हैं, बड़ी सुंदर गलियां हैं, चौराहे हैं, बहुत सुंदर है, और उन सब नगरों को सुगंधित जल से धो करके साफ करके और जो है वो मार्ग बनाया गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ की जो चित्रकारी है वो स्वयं कामदेव ने अपने हाथ से बनाई, ऐसी लोगों के घरों में चित्रकारी थी। वहां पुरुष बड़े संत स्वभाव के थे, उनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और आचरण से धर्म टपकता था। देखो बुद्धि से तो खूब ज्ञान की बातें कर लो और आचरण में तो ऐसा ही हो। बताया ना आपको कि मोर है वो कितना सुंदर है और बोलता है तो सबका मन मोहित कर लेता है। और मोर का भोजन क्या होता है? आसन, आसन है उसका, अही माने सर्प को खाता है मोर, पंजे से यूं पकड़ लेता है। तो भाई बोले तो अच्छा, लेकिन आचरण जिसका ठीक नहीं हो वो संत नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान तो उसके क्रियाओं में उतरना चाहिए। वहां पहुंचने पर उन्होंने दूर से देखा कि ओहो ये जनक जी का महल है, विथकई विबुध बिलो की बिलासु। उसको देखने पर तो देवता लोग भी उसको देख करके ठगे रह जाते हैं कि हमारे पास भी ऐसा सुविधा का साधन नहीं है। परकोटे बड़े सुंदर, लोगों के घर है खूब अच्छे पुताए हुए हैं और रेशमी वस्त्रों के ऊपर अनेक प्रकार की चित्रकारियां की गई हैं। ऐसे महलों के बीच में सीता जी का महल था। सी निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात, सीता जी के रहने की जगह की शोभा हम कैसे कहें। बहुत सुंदर सीता जी का महल था। देखो एक एक इसमें तो नहीं आया है, एक अयोध्या में एक कहावत है कि एक बार जनक जी महाराज विचार किए कि हमारी चारों बेटियां अयोध्या में विवाहित हैं, तो इन बेटियों से मिलने के लिए हमको आना ही पड़ता है, बेटियां बहुत प्यारी थी उनको, तो बार बार हम अयोध्या में आवे, अयोध्या के महल में रहे, अयोध्या का भोजन करें अच्छा नहीं है, बेटी के घर का भोजन प्राय नहीं करना ही अच्छा मानते हैं। शास्त्र में आता है संतान हो जाए तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, थोड़ी छूट है, लेकिन भले आदमी छूट का लाभ नहीं लेते, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे देते हैं वहां। क्यों नहीं करते कि लड़की को हमने दान में दिया, उसके साथ में हमने उसके वस्तु दी, दान दी, जहां हमने दान दिया वहीं से हम वापस भोजन करें, ये कहां न्याय की बात है? वो तो अपना दिया हुआ दान वापस लेना होता है, इसलिए नहीं करते। सेठ जी कहते थे कि कर लो भोजन वहां कर लो और पैसा दे दो, क्योंकि बाहर जाके कहां करोगे, अनजान में तो कर नहीं सकते, होटलों में करोगे तो उससे तो अच्छा है, अस्तु। तो जनक जी महाराज ने देखा कि यहां थोड़ी जमीन खरीद ले अयोध्या में, तो जनक जी महाराज ने देखा कि अब कैसे क्या करें, तो दशरथ जी के पास एक प्रस्ताव भेजा। दशरथ जी से कहा कि महाराज आप हमारे समधी हो, हम आपसे थोड़ी जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि हम यहाँ आवे, अपना मकान बनाया हुआ हो, वहां ठहर जाए, भोजन कर ले, रह जाए, अपनी बेटियों से मिल ले और चले जाए। दशरथ जी महाराज ने कहा कि ये अयोध्या सब आपकी है, आराम से बनाओगे? ऐसा नहीं महाराज, हमने बेटी दी है यहाँ। अब दशरथ जी की मुश्किल हो गई, जनक जी को यहाँ जमीन देवे मुफ्त में देना चाहते हैं तो वो तो पैसा दे के लेना चाहते हैं, मूल्य दे करके, मूल्य लेवे तो अच्छा नहीं लगता। अब क्या करें, असमंजस में पड़ गए, बहुत उदास हो गए। तो केकी रानी ने पूछा कि महाराज आप कई दिनों से उदास उदास रहते हो, समस्या क्या है? तो दशरथ जी महाराज ने कहा ये समस्या है, न तो मैं जमीन बेच सकता हूं और न वो जो है बिना मूल्य के ले सकते हैं, समस्या हो गई है। इसमें क्या समस्या है? ये समस्या है ही नहीं। तो समस्या तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो गले में फांसी जैसी समस्या हो गई कि नहीं महाराज, देखो ऐसा करो, मैं एक मणि लाती हूं, खजाने में से जाकर एक मणि लेकर के आए, आप जनक जी को बोल दो कि ऐसी ऐसी एक मणि और ले आओ, ऐसी की ऐसी हम आपको जमीन दे देंगे। बहुत दुर्लभ मणि थी वो, मणि ला करके दे दी। वो मणि ला करके दशरथ जी महाराज को दी। दशरथ जी महाराज ने संदेशा करवाया। पहले दशरथ जी ने पूछा कि इससे क्या है कि महाराज ऐसी मणि आपको संसार में नहीं मिलेगी, तो न तो वो दे सकेंगे और न आपका लेना होगा। उनका तो देना नहीं हो, दे नहीं सकेंगे और आपका लेना नहीं होगा, दोनों काम हो जाएगा। तब वो उनको जमीन लेनी होगी तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें कीमत दो, कीमत ले हो, ऐसा नहीं बोल सके। आपने कह दिया साहब ये मणि है, ऐसी मणि और ले आओ, जमीन ले लो। दशरथ जी ने कहा ठीक बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। अपने आदमी से जनक जी के पास समाचार करा दिया है, महाराज ऐसी मणि ले आओ आप। अब उधर जनक जी महाराज का मुंह लटक गया। जनक जी महाराज के ऐसी मणि तो संसार में मिल नहीं सकती भाई, अब वहां जमीन लेनी भी जरूरी है, नहीं दे सकते तो दशरथ जी महाराज सोचेंगे कि बस जनक के पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमने कह करके आफत कर दी, वास्तव में है नहीं, ऐसी मणि तो हमारे पास है नहीं, करें तो क्या करें। अब वो जनक जी महाराज का मुंह लटक गया। सीता जी वहां पीर में आई हुई थी, सीताजी ने देखा कि पिताजी बड़े उदास है, कि पिताजी क्या बात है, क्या बात है, आप बहुत उदास हैं। तो पिताजी का आंखों में पानी आ गया। सीताजी ने पूछा बोलो तो सही आप क्या बात है पिताजी, कि बेटा तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह बहुत है, तुम अयोध्या रहती हो, मेरा थोड़े थोड़े दिनों में तुमसे मिलने का मन होता है, मैंने दशरथ जी से कहा मुझे थोड़ी जमीन दे दो, मैं मकान बना लूं, महल बना लूं, तो दशरथ जी ने ये मणि भेजी है कि इसकी कीमत ये होगी। अब बेटा मेरे पास तो मणि है नहीं, अब मैं या तो अपने दिल को महसूस लूं, तुमसे मिलना जुलना कम कर दूं, छोड़ूं तुमको, तुम्हारे रहो, कभी मिलना होगा तो ऐसे ही मिल लेंगे, बार बार मिलने की इच्छा होती, या तो उसको छोड़ूं या ऐसी मणि लाऊं। मणि तो बेटा मैं ला नहीं सकता। जनक जी महाराज रोने लगे, तो सीता जी ने कहा पिताजी इतनी सी बात के लिए क्या रोते हो आप, आप कह दो कि मणि मिल जाएगी, ये कह दूं कहां मिल जाएगा, आप चिंता मत करो मणि मिल जाएगी। तो बेटा कुछ एक मणि के लिए कहा, एक मणि, आप चिंता मत करो पिताजी, आप कह दो कि हाँ मिल जाएगी। अब सीताजी ने कह दिया, सीताजी आग्रह करने लगी, तो कहते ठीक है बेटा, बेटी के प्रति बहुत प्यार था उनका, उन्होंने जैसे कहा वैसे ही उस आदमी को कह दिया ठीक आ जाएगा। वो आदमी वहां संदेश लेकर के दशरथ जी के पास पहुंचता नहीं है, उससे पहले मणियों की वहां वर्षा होने लग गई, अयोध्या में वर्षा होने लग गई हो, एक ढेर हो मणि 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 का, मणि का पहाड़ बन गया। दशरथ जी के पास सूचना आई कि महाराज यहां तो मणि यूं पड़ रही है, बरसात हो रही है, और एक एक के ऊपर मणि यूं जच रही है, ऐसे कोई यूं बिखर भी नहीं रही, बड़े कायदे से हो रही है। दशरथ जी ने कहा अच्छा, दशरथ जी जाके देखे तो दशरथ जी वहां देखते रह गए, यूं मणि मणि पहाड़ हो गया। जैसी मणि थी वो मणि फीकी, जो कहा ना कि ऐसी मणि होनी चाहिए, वो मणि तो थी फीकी, और उस बड़ी विलक्षण मणियों की बरसात हुई। बरसात हुई तो फिर राम जी को पता चला, राम जी ने कहा अच्छा ये तो सीता जी की करामात है। राम जी चुप हो गए। सीता जी ने जनक जी से कहा पिताजी पिताजी मणि वहां पर पहुंच गई है। कैसे बेटा, आप चिंता ही मत करो, चलो अपने गाड़ा जोत लो, अपने रथ वगैरह, मणि का पाड़ो, स्वागत के लिए आगे आए दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज बड़े शर्मिंदा हुए, क्या महाराज मैंने तो एक मणि के लिए कहा था आपने, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ पता ही नहीं, कहना क्या चाहते हो, ये देखो ये आपने हमारे मुश्किल कर दी, कि क्यों, अब हमको लोग मारेंगे, यहां सब राजा मिलकर के आक्रमण करेंगे इस मणि के लिए। एक मणि तो हम कहीं छिपा सकते थे, मणियों का पहाड़ खड़ा कर दिया, देश देशांतर के राजा लोगों को पता चलेगा, अरे वहां तो मणि का पहाड़ है, करो दशरथ पर आक्रमण, मिलजुल के करेंगे, कोई क्या करेंगे, कलह पैदा करा दिया आपने। अब सीता जी अपने ससुराल पक्ष में बोलने लगी, तो ठीक है आप कहो वैसा करें, पिताजी ने अपने उनसे ससुर जी से निवेदन किया, जैसा आप कहो वैसा कर दे, कि भाई देखो हमारी अयोध्या सुरक्षित रहनी चाहिए, अयोध्या जिसके साथ कोई युद्ध कर न सके, ऐसे हमारी अयोध्या है, ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए, अच्छी बात है। तो राम जी की ओर इशारा किया, राम जी ने कहा ठीक कर दो, पत्थर बन गया वो मणि पर्वत, आज भी अयोध्या में कहलाता है। सीता जी की ऐसी ऐसी यहां भी बहुत सी आएंगी विशेषताएं। तो सीता जी का महल देखा, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागद भाटा। राजा के यहां पर बड़े बड़े मागद भट लोग आए हुए, खूब बहुत सुंदर वहां ठाट बाट हो रहे। अब विश्वामित्र जी महाराज दोनों शिष्यों के साथ वहां पर गए, तो वे बाहर एक जगह अवराई थी, अवराई में रहे, अवराई माने आम का बगीचा। अब साधु संत होते हैं वो तो ऐसी एकांत और बगीचा हो, देखिए जैसे और लोग सुविधा देखते हैं ना, ऐसे साधु लोग एक सुविधा सबसे ज्यादा देखते हैं कि पानी है कि नहीं है। पानी की सुविधा सबसे पहले देखते हैं, पास में कोई तड़ई हो या नदी हो या पानी की सुविधा हो। तो देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास, सब भांति, सब प्रकार की सुविधा। विश्वामित्र जी ने कहा राम मेरा तो यहां मन लगता है, यहीं रहे, कितना बढ़िया बगीचा, अच्छी हवा आ रही, ठंडी हवा, अच्छी बात है महाराज, यहां ठहर जाओ। वहां ठहर गए, विश्राम किए। इतने में ही जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं। तो विश्वामित्र जी आए ये पता चला, तो जनक जी महाराज आए, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसर बर गुर ज्ञात, मिले चले मिलन मुनि नायक मुदित राऊ एहि भात। अपने साथ मंत्रियों को ले लिया, पवित्र मंत्री, रिश्वतखोर नहीं, पवित्र मंत्रियों को लिया और अच्छे अच्छे योद्धाओं को लिया, अपने गुरुजी को साथ में लिया, अपने ज्ञातियों माने अपने सगे संबंधियों को साथ में लिया और विश्वामित्र जी का जाकर के खूब अच्छा स्वागत किया, उनके जाके चरणों में प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, आपस में खूब अच्छे कुशल प्रश्न हुए, कैसे हैं आप, क्या है क्या है। इधर राम और लक्ष्मण कोई पास में फुलवाड़ी थी, फुलवाड़ी देखने गए थे। अब कौन सी फुलवाड़ी है ये तो यही जाने, पर पास में फुलवाड़ी थी, फुलवाड़ी देखने के लिए गए। ये वही फुलवाड़ी है जिसमें सीता जी आएंगी, लगता तो ऐसा ही है। परंतु उस फुलवाड़ी में गए, बहुत अच्छे अच्छे फूल वहां पर देखे और वहां पर लेने वाले लोग थे, उन्होंने भी उन दोनों बच्चों को देखा, बहुत अच्छा उनका स्वरूप, चित्त आकर्षित हो जाए, मोटी मोटी आंखें, श्याम गौर शरीर, किशोर उनकी अवस्था, सुंदर उनका मुस्कुराना, बहुत अच्छा लगा। और वहां फुलवाड़ी देख दाख करके दोनों गुरुजी के पास आए, गुरुजी को प्रणाम किया, उनका विनय और उनका मुस्कुराना, उनका मधुर स्वरूप ये देखा तो जनक जी देखते ही रह गए। विश्वामित्र जी तो एकदम गौण हो गए, भयव विदेह विदेह विशेषी, देखो विशेष विदेह हो गए, वो विशेष विदेह, इसका गूढ़ रहस्य क्या है कि विदेह है वो तो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ध्यान करने वाले, उनमें डूबे रहने वाले। आज विशेष विदेह क्या हुए कि वे सगुण साकार के रूप में मोहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान रिपु करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो गदगद गिरा गभीर। क्या जनक जी की दशा हुई है, विशेष विदेह हुए गए, वो विशेष विदेह प्रेम में मग्न हो गए। थोड़ा विवेक का सहारा लिया, आंखें डबडबा गई, वाणी कंपित होने लग गई। बड़े विनम्र भाव से गंभीर स्वरों में उन्होंने कहा, हे नाथ, दोनों बालक कौन है? ये कोई ऋषि समुदाय के हैं या राज समुदाय के हैं, कुछ पता नहीं चला है। इनका वेश तो ऐसा है जैसे ऋषि समुदाय के हों, ऋषि पुत्र हों, लेकिन इनकी आंखें, इनका शरीर का सौष्ठव, इनका तेज, इनकी अदब कायदे की बातें ऐसी लगती हैं जैसे कोई राज घराने के बच्चे हों। ऐसा अनुपम सौंदर्य देखकर कभी कभी तो यूं भी मेरे मन में वृत्ति आ रही है कि वेद पुराण में जिस ब्रह्म को न इति से कहा है, वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही कोई सगुण साकार रूप से इन दोनों के रूप में आया है क्या? क्या पता भाई, तुमको ये क्या पता? मुझे इसलिए पता चला कि मेरा जो मन है इसमें कभी किसी के संसार के सौंदर्य में आकृष्ट होता ही नहीं है। जनक जी महाराज का मन बड़ा विचित्र था। वो सुखदेव जी महाराज उनके पास शिक्षा लेने गए थे। व्यास जी ने भेजा कि बेटा, भक्ति की शिक्षा मैं दे दूंगा, ज्ञान की शिक्षा मैं दे दूंगा, लेकिन कर्म करते हुए निर्लेप रहने की एक शिक्षा है, वो जनक जी देंगे। सुखदेव जी महाराज गए, दरवाजे पर आए, राजा को खबर मिली कि व्यास जी के बेटा सुखदेव जी आए हैं। ठीक, अब वो सुखदेव जी महाराज को लोग ला रहे थे। जनक जी महाराज ने कहा, रानी को बुलाओ। रानी को बुला करके अपने पास बैठाया। सुखदेव जी को बुरा लगा। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि मुझे देख करके रानी को बुला रहे, मुझे देख करके या इतने मेरे साथ आदमी, इनको देख करके तो इनको ये कहना चाहिए कि रानी को अभी नहीं आना चाहिए, अभी मेरे से लोग मिलेंगे। रानी को बुलाया, अपने पास में बैठाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने रानी के गले के ऊपर यूं हाथ रखा है। कितनी अशिष्टता, कितनी मर्यादा विहीन बात, रख दिया साहब, उनको कौन कहे? जनक जी महाराज वे सुखदेव जी महाराज वह खड़े रहे, उनसे आगे पैर नहीं बढ़ा कि भाई ये कायदा ही नहीं है। वो जब दोनों बैठे हुए हैं, मैं इतने समुदाय के साथ जाऊं, कायदा नहीं, ये तो कायदा बिगाड़ सकते हैं, मैं क्यों कायदा बिगाड़ू? कहां भेज दिया मुझे व्यास जी ने? वो खड़े रहे वहां। जनक जी कहते, आइए आइए सुखदेव जी महाराज, आइए, स्वागत है, आप पधारिए। क्या आ जाऊं? क्या आइए ना। वो आने लगे, इधर एक सेवक को कहा, जाओ सिगड़ी लेके आओ, जलते हुए अंगारे की सिगड़ी। वो सिगड़ी लाके यहां रख दी। जब वो पास में आए, जो एक हाथ इसके ऊपर रख दिया, अब एक हाथ तो स्त्री के कंधे पर, एक हाथ जलते हुए अंगारे पर। आइए आइए साहब, आइए पधारिए। दंग रह गए कि अरे मैं क्या सोच रहा हूं, केवल बाहर का आचरण करने वाले से कि ये स्त्री के कंधे पर हाथ रखा है, इसमें इसके मन में कोई खराबी है, ऐसा मैंने सोचा। आग के ऊपर हाथ रख दिया और आग ने जलाया नहीं है इनको, ये तो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में दो ही प्रकार की परिस्थिति मिलेगी, या तो अनुकूल परिस्थिति मिलेगी या प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी। तो स्त्री है अनुकूल परिस्थिति का द्योतक है, वाचक है, और आग है वो प्रतिकूल परिस्थिति का वाचक है। वो हाथ रखा, सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, गदगद हो गए कि महाराज मुझे आज शिक्षा मिल गई, दोनों परिस्थितियों में सम रहना चाहिए। यह उपदेश केवल हमने सुना तो बहुत है, देखा नहीं था, आज मैंने देख लिया। सुखदेव जी महाराज ने बहुत धन्य धन्य होकर के वहां से वापस प्रस्थान किया। व्यास जी महाराज से कहा कि महाराज आपने बहुत अच्छी जगह भेजा, क्या देखा बेटा? ऐसे ऐसे देखा। तो कहा कि ये विदेह है, विदेह। जनक जी महाराज कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा किसी भी विषय में कभी कोई राग है ही नहीं संसार में। शरीर की सुंदरता तो मेरे हृदय में कभी बस ही नहीं सकती, लेकिन इन दोनों की सुंदरता देख करके थकित होत जिमि चंद चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा को देखते ही रहता है, देखते ही रहता है, वो तृप्त नहीं होता। तो मेरा विराग मन है, न जाने क्यों इन दोनों को देखते देखते थकता ही नहीं है, खूब देखते रहे इनको। इसलिए महाराज मैं सरल भाव से आपसे पूछ रहा हूं, कोई मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूं, ये दोनों कौन है महाराज? कोई छिपाना नहीं मेरे से, आपका बालक हूं, छिपाना नहीं। और अंतिम बात बोल दी, इन्हें विलोकित अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। जो निर्गुण निराकार में प्रेम रखने वाले हैं ना, वो सगुण साकार में भगवान के अवतार को मायावादी मानते हैं कि भगवान ने तो माया को स्वीकार किया, ये मायावादी है भगवान। उन निर्गुण निराकार वादियों में पूछा जाए कि जनक जी का इष्ट कौन था, जनक जी का इष्ट निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन था। और उनका मन किस में आकृष्ट, किस में हुआ? आकृष्ट राम और लक्ष्मण में हुआ। इन्हें विलोकित अति अनुरागा, ब्रह्म में तो मेरा अनुराग है लेकिन इसमें अति अनुराग है। ज्ञान मार्ग ही कहते हैं कि भक्ति मार्ग में माया साथ रहती है, और ये बोलते हैं हमारे जनक जी महाराज की ब्रह्म की उपासना में अनुराग है, लेकिन यहाँ अति अनुराग है, बहुत ज्यादा प्रेम है। इन्हें विलोकित अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा, मेरे मन में जो ब्रह्मानंद बसा हुआ है वो जबरदस्ती कम हो रहा है, ये इनका आनंद ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मैं क्या करूं? विश्वामित्र जी से कहा कि अब आप सच्ची सच्ची तो बात आप बताओगे तब होगा, छिपाना नहीं आप। विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुराए। अब देखना ये दृश्य बहुत विचित्र दृश्य है ये। अब देखो यहां सामने तो यूं बैठे हैं, पास में यूं खड़े हैं। विश्वामित्र जी से यूं प्रश्न हुआ ना, तो कह मुनि बिहसी, मुनि हंसे, कहो नृपनी का, हाँ राजन तुम ठीक बात बोलते हो, तुम्हारे वचनों से मैं सहमत हूं, सहमत हूं। वचन तुम्हार हो ही न अनिलिका, अरे तुम्हारे अंदर सत्य सनातन सच्चिदानंद घन ब्रह्म विराजमान है, तो तुम्हारी वाणी में असत्यता आई कैसे सकती है? वाणी में झूठ तो कब आता है? जब अंदर झूठ बसा हुआ होता है। जिसके हृदय में भगवान बसे हुए हैं, सत्य बसा हुआ है, उसके हृदय से वाणी असत्य कैसे निकलेगी? वचन तुम्हारन होई अली का, तुम्हारे वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। अरे अब देखो बिचारे सीधे साधे विश्वामित्र जी, निकली गई बात। ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, जहां तक प्राणी रहते हैं ना वहां तक सबको ये प्रिय लगते हैं, ये यूं प्रिय लगते हैं, ऐसा राम जी की ओर देखा तो मन मुस्काए राम सुनी बानी। तो राम जी और विश्वामित्र जी की आंखें मिली तो राम जी महाराज ये विश्वामित्र जी देख करके मुस्कुराए, मुस्कुराए थोड़े से नीचे आंख कर ली। इसका अर्थ अब आप आगे मत कहना, आप पोल खोल दोगे हमारी। तो एकदम बात बदल दिए विश्वामित्र जी, हाँ रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये तो रघुकुल श्रेष्ठ दशरथ जी के बेटा है, और मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे कल्याण के लिए उन्होंने राजा ने मेरे साथ भेजा है, इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। राम लखन दो बंधु भर, रूप शील बल धाम, मखराखेओ सब साखी जगू जीते असुर संग्राम। इन्होंने तो महाराज मेरे यज्ञ की रक्षा की है, सब लोग जानते हैं, उधर अगल बगल के सब लोग जानते हैं कि इन्होंने हमारी कैसे यज्ञ में रक्षा की है। देखो एक भी भगवत वाचक बात में शब्द नहीं कहे, इतना सा ही कहा कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। बस यहां तक कहने के बाद राम जी की मुस्कुराहट से विश्वामित्र जी समझ गए कि महाराज अभी इनके अंदर और प्रेम बढ़ने दीजिए, क्यों महाराज ये दशरथ जी के बेटा है। बात ही बदल दी एकदम, वो तो ब्रह्म की बात कर रहे थे, अरे ऐसों को तो सगुण की बात विशेष बतानी चाहिए थी, पर क्यों नहीं बताई कि नहीं बताई साहब, क्यों यहां लीला करनी है भगवान। कल आपने सुना ना कि अगला चरित्र देखना तुम राम जी का, ये चरित्र है भगवान के विशेष, कहीं तो अपने को प्रकट करना और कहीं अपने को विशेष छिपाना। मुनि तब चरण देखी कह रहा हूं कहीं न सकाऊ निज पुण्य प्रभाव। राजा ने कहा हे महाराज क्या बताऊं, मैं अपने पुण्य का प्रभाव समझ नहीं सका हूं। ये आनंद को भी आनंद देने वाले दोनों के दोनों भाई, इनको देख करके मेरा मन तो बहुत प्रफुल्लित हो गया, और इनकी आपस में जो चेष्टाएं हैं, इनकी प्रीति परस्पर पाविनी। बड़ा भाई का छोटे भाई के प्रति देखना, बोलना, थोड़ा इशारा करना, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति आदर और इशारा, इनकी प्रीति परस्पर पावनी कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। इतना प्यारा लगता है इन दोनों का आपस का जो बोलना और एक दूसरे को देखना, मेरा मन ही नहीं करता हम उठ के वापिस जाऊं, देखता रहूं। ऐसा लगता है कि ब्रह्म और जीव का जैसे स्वाभाविक प्रेम होता है, ब्रह्म और जीव में स्वाभाविक प्रेम होता है। कहते हैं स्वाभाविक प्रेम कहाँ है, हम लोग जीव हैं, हम लोग तो ब्रह्म में कहाँ प्रेम करते हैं, यदि ब्रह्म में प्रेम करते तो हमारा कभी उद्धार हो गया होता। ये कैसे कह दिया कि ब्रह्म और जीव में जैसे स्वाभाविक प्रेम है ऐसे राम और लक्ष्मण में स्वाभाविक प्रेम है, हमारा कहां स्वाभाविक प्रेम है राम में। अरे ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसका भगवान में प्रेम न हो। क्या हम तो भगवान को मानते नहीं बाबा, हम तो कहते हैं खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ये संसार में जो कुछ है ना यही है, कर लोगे सो अपना है, भोग लोगे सो अपना है, ले लोगे सो अपना है, बाकी आगे किसने देखा है, किसी ने आके कहा क्या, इतने बड़ेरे मर गए, किसी ने आके कहा कि बेटा मैं यहाँ हूँ और यहाँ सुखी हूँ दुखी हूँ, क्या कुछ नहीं है, ये सब पेट भराई के धंधे हैं, ब्राह्मणों ने लिख दिया और साधुओं ने बोलना चालू कर दिया, अपना अपना पेट भरते हैं, कुछ नहीं है, कोई भगवान है कोई नर्क है कोई स्वर्ग है, कुछ नहीं है, सब ये बनाने की बातें, पेट भरने की कला है, सबकी अपनी अपनी कला है भाई। कोई जैसे दुकान पर बैठ के पेट भरता है, कोई खेती करके पेट भरता है, इन साधु मोड़ों को और तो दूसरा कोई काम है नहीं, बैठे बैठे बस को लगाते हैं और फिर आटा है दाल है आ जाता है लोगों से, जीव के मस्त पड़े रहते हैं, सब फालतू की बात है, कुछ नहीं, न कोई भगवान है न कोई स्वर्ग है न कोई नर्क है, डराते हैं केवल बैठे बैठे। अरे कुछ तो पता चले भाई, कुछ तो पता चलना चाहिए ना, ऐसे ऐसे हैं साहब हम तो। और आप कहते हो कि ब्रह्म जीव इव सहज सनेव, ब्रह्म और जीव का स्वाभाविक प्रेम है, तो कहां हमारा प्रेम है महाराज ब्रह्म में, हम तो मानते ही नहीं है उनको। अच्छा भाई आप क्या चाहते हो, हम तो यहां मौज मस्ती चाहते, खूब मौज करें यहां, तो क्या चाहते हो मौज में, बस सुख चाहते हैं, ये सुख चाहते हैं। ये सुख क्या चीज है भाई, सुख क्या है, सुख क्या होता है, एक मौज होती है, अरे मौज तो है लेकिन ये मौज क्या है, ये आप जिसको मौज बोलते हो हम उसको भगवान बोलते हैं, आप जो कहते ना हम खाओ पियो और मौज करो बस कोई स्वर्ग है कोई भगवान है, अच्छा नहीं है लेकिन ये मौज क्या चीज है ये बताओ। मौज तो भगवान, हम यही कहते हैं भगवान है, भगवान मौज भगवान है, आनंद भगवान है, सत चित और आनंद भगवान कहते हैं नहीं हम, अच्छा दूसरी बात, तुम मरना चाहते हो क्या? अरे बाबा मुंह से थूको, हमारा नाम मरने के लिए बोल दिया, थूको। हम जीना चाहते हैं। तो जीना चाहते हो तो जी जीने की इच्छा है, ये क्या है? ये भगवान की इच्छा है। मौज मटर गस्ती की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है। है कोई ऐसा आदमी, ऐसा कोई भी प्राणी कि जो भगवान की इच्छा का त्याग कर सके? जो 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 मरना नहीं चाहता है। कह रहे बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, रेलगाड़ी के नीचे आ जाते हैं, तेल छिड़क लेते हैं और घर में थोड़ी सी खटपट हुई, फांसी के लटक जाते हैं, पंखा के लटक जाते हैं, बहुत मरते हैं। क्यों मरते हैं? ये मरते हैं मूर्खता से, सुख चाहते हैं। वो सुख चाहने के लिए मरते हैं, सुख चाहने के लिए। सुख की तो इच्छा है ही ना, तो सुख की इच्छा है। वो देखते हैं कि बाबा ये दुख से पिंड छूटे और मर जाएंगे, दुख से बच जाएंगे। महामूर्ख है, उनको चौगुना दुख मिलेगा आगे। जितना दुख इनका मानव शरीर में बाकी था, वो दुख तो वे ज्ञान के द्वारा फिर भी टाल सकते थे। अब जो उनको कर्म का फल मिलेगा और जान करके जो मरे वो मिले, वो दुख मिलेगा 10 गुना 50 गुना 100 गुना ज्यादा। लेकिन वो मरने वाला भी सुख चाहता है कि मर जाऊं तो बाबा दुख से पिंड छूटे। तो ये जो सुख की इच्छा है, चाहे सुख कह दो, चाहे आनंद कह दो, चाहे वाटर कह दो, चाहे वारी कह दो, बात एक ही। वारी माने जल, वाटर माने जल, आप माने जल, आप बोलते हैं जल को। तो ये सब एक तत्व के नाम अलग अलग है। मौज शब्द है, ये भगवान का वाचक। आनंद है, ये भगवान है। सुख है तो भगवान है। सुख को, भगवान को कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। अब बार बार वो दशरथ जी, ये क्या नाम, जनक जी देखते हैं, उनका हृदय पुलकित होता है, रोमांचित होते हैं। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाऊ, पुलक गात और अधिक उछाऊ। और इतना सब करके जनक जी महाराज का पेट नहीं भरा हो। जनक जी महाराज के, कहां आप इस बगीचे में बैठे हो? ये हमारे हमारे महल में चलो आप। ये महल में ले जाने की क्या जरूरत थी? बाबा लोग आए थे अपने जंगल में, अच्छे हैं। चले ही लवाई नगर अवनीसु, और सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन बुआला। अपने महल के पास बहुत सुंदर सुखद जगह थी, वहां इनका निवास कराया। या तो सब ऋषि मुनियों का वहीं कराते, सब ऋषि मुनियों का तो कराया नहीं, और इनका कराया। क्यों? कभी झरोके से, कभी घूमते हुए, कभी चलते हुए राम और लक्ष्मण के दर्शन करेंगे। ऐसी जनक जी के अंदर दर्शन की लालसा हुई। चले ही लवाई नगर अवनीसु, अपने नगर में ले गए, और तहां बासुले कीन भुआला, और फिर वो अपने महल में चले गए। जनक जी महाराज, ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। ऋषियों के साथ में राम जी महाराज, और भी ऋषि मुनि थे, क्योंकि विश्वामित्र जी के यज्ञ में कई ऋषि थे, वो मंडली सहित आए थे। सब वहां पर बैठे, भोजन वोजन किया। सायंकाल थोड़ा समय, थोड़ा सा बाकी सा समय, लक्ष्मण जी के मन में गुदगुदी आए। देखें देखें जनकपुर कैसा है, कि क्या पता कि वो वहीं पर बैठे बैठे हूं, महलों को देखें, मकानों को देखें, झरोकों से देखें, यूं देखें लक्ष्मण जी। तो राम जी महाराज को पता चला। अब लक्ष्मण जी ये कितना कायदा रखते हैं, बड़े भाई से नहीं कह सकते कि मैं देखने चलना चाहता हूं। अपनी इच्छा को अपने बड़ों के सामने कैसे रखा जाए, कितना कायदा है। आजकल तो लोग कहते हैं, नहीं साहब मैं नहीं, ये स्वतंत्र विचार के, हम स्वतंत्र विचार के हैं, फ्री माइंड, फ्री माइंडेड मैन, एकदम खुले दिमाग के आदमी है, खुला विचार है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो भाई, हम ये बात हमारी तो ये बात है सर। लेकिन नहीं, लक्ष्मण जी महाराज प्रभु भय बहुरी। एक तो बड़े भाई को कैसे कहें नगर देखने की इच्छा है, और मुनि सकुचाई गुरुजी से कैसे गए? तो वो बिचारे अपने मन को महसूस रहे, प्रकटन कहे ही और मन ही मुस्काई। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी आदमी को देखता है, ऐसे ऐसे कुछ इशारा करता है, इसका मतलब कुछ बोलना है। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो,
है
नहीं, बोलो तुम्हारे मन में कुछ बोलने की इच्छा है, फिर वो बोलता है। ऐसे प्रकट न कहे ही मन ही मुस्काई, लक्ष्मण जी मन ही मन में मुस्कुराते हैं। तो अंतर्यामी भगवान अपने भाई के मन की गति जान गए और भगत वचलता ही हुलसानी। जो उनके लक्ष्मण जी के मन में भय था ना, वो भय राम जी के मन में भक्त वत्सलता के रूप में अब जागृत हो गया। अरे मेरा छोटा है, मेरा कायदा रखता है, कायदा रखते हुए कुछ ये बोल नहीं रहा है, लेकिन की इच्छा है। परम विनीत सकुचि मुस्काई, वाह बोले गुरु अनुशासन पाई। राम जी महाराज ने बड़े विनय भाव से मुस्कुराते हुए अपने गुरुजी को देखा और गुरुजी की आज्ञा हुई तब कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए। हे गुरुदेव, लक्ष्मण ये नगर को देखना चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच से बिचारे प्रकट में बात कह नहीं पाते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये बच्चा है, इसको दिखा लाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं और अभी इसको दिखा करके अभी ले आता हूं। अरे अरे राम राम राम, वाह तुम कैसी मर्यादा रखते हो। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम कैसी मर्यादा रखते हो, तुम तो बहुत धर्म की मर्यादा रखने वाले हो भाई, तुम तो प्रेम के अंदर विवश हो, सेवक को सुख देने वाले हो। आओ जाओ। अब देखो गुरु जी की आज्ञा में एक रहस्य भरा, जाय देखी आवहु नगर। नगर को तो तुम देख आओ, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाओ। तुम देखने के लिए जा रहे हो कि दिखाने के लिए जा रहे हो? सुंदर वदन दिखाओ। अरे तुम नगर को तो देख पर अपना सुंदर वदन है उसको तुम देखा करके आओ। सुंदर वदन दिखाई। तो राम जी महाराज गुरु जी के चरणों में वंदना किए, लक्ष्मण जी भी, और दोनों के दोनों रवाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुंदर वदन दिखाओ वाली बात तो हो ही गई, अब ऐसा सुंदर भगवान का रूप, पीत बसन परिकर कटिभाता, चारु चाप सर सोवत आता, तनवनो हरत सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, के हरि कंदर बाव विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुंदरता दिखाएंगे तो बड़ा सुंदर स्वरूप तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। पीला तो वस्त्र पीताम्बर और ये कमर कस रखी है, यहाँ पर है और हाथ में ये कंधे के ऊपर यह धनुष है और सर सोता एक बाण हाथ में लिए हुए है। सारे शरीर पर बड़ा अच्छा चंदन लगा हुआ है, दोनों शरीर एक श्याम शरीर एक गौर शरीर बड़ा अच्छा लगता है। के हरि कंदर सिंह के समान उनके कंधे ऊंचे हैं, लंबी लंबी भुजा है और उर चिर नागमणि माला, उनके यही गले के अंदर बड़ी सुंदर माला है, मणियों की माला है और आंख उनके कमल के समान है। ये ऐसा सा सौंदर्य क्यों आता है कि पाठक पढ़ता पढ़ता भगवान का ध्यान कर ले। अब तुलसीदास जी ऐसा तो कैसे कहें करो अब तुम ध्यान करो, सेठ जी तो ऐसे ही बोल देते पढ़े प्रवचन देते देते अब तुम ध्यान करो, ऐसे चरण है ऐसे घुटने हैं ऐसे करें बोल सकते थे। तुलसीदास जी को रामचरित्र लिखना है, वो रामचरित्र में अपनी आज्ञा कैसे दे, कोई प्रवचन तो कर नहीं रहे थे, ऐसा वर्णन करें कि वो पढ़ने वाला उसका ध्यान करने लग जाए भगवान का। ऐसे ही भागवत में है, चलते 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 भगवान के बीच में ध्यान करने के लिए सौंदर्य वर्णन। कानन कनक फूल छवि दे ही, चितवत चितई चोरी जनु ले ही। उनके कानों में बड़े सुंदर स्वर्णिम फूल है, चितवत चितई चोरी जनु ले ही, जिसकी भी आंखें वहां पड़ती है और वो उनकी शोभा को चुरा चुरा करके हृदय में बसाता हूं। बहुत सुंदर भगवान का देखना, बड़ा सुंदर उनके तिलक। रुचि रे चौतनी सुभग सिर, चौतनी माने उनकी टोपी, चकोर टोपी, चकोर टोपी है वो, बहुत सुंदर लग रही है। और घुंघरालू घुंघरालू बाल बड़े अच्छे हैं। नख सिख सुंदर बंधु दऊ शोभा सकल सुदेश। वे जहां भी जाते हैं वो देश सुंदर बन जाता है, जहां वो जगमगा जाता है। लोगों को पता चला कि राजा के दो लड़के अयोध्या से दो लड़के आए विश्वामित्र जी के साथ आए। कहां रे वो आए तो सब अपना काम ध्यान छोड़ छाड़ करके ऐसे भगे जैसे कोई महादरिद्री आदमी मणि को लूटने के लिए। ऐसे इस मणि को ले लो, करोड़ों रुपए की मणि है भाई, हमारा दारिद्र दूर हो जाएगा। महादरिद्री करोड़ों रुपए की मणि को लेने के लिए जैसे दौड़ता, ऐसे दौड़े दौड़े गए वो। मनहु रंग के नहीं दी, लूटने लगी। पास में जाते हैं इतना आनंद मिलता है उनको। ओहो ऐसे गौर निचोर श्याम वर्ण वाले, उन दोनों को देख करके लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अब बेचारी स्त्रियां क्या करें, स्त्रियां ऐसे थोड़ी बक्के आए। तो युवती भवन झरोखन लागी, युवतियां अपने महल के झरोखों से यूं देखती हैं और देखती करे इतना सुंदर रूप आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। राम जी का रूप देख देख करके तो सब मग्न हो जाती हैं। आपस में बात करती ए सखी, कामदेव को तो सुना था लेकिन कामदेव जैसे करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाए तभी ऐसा सुंदर स्वरूप तो देखने में नहीं आ सकता ना। हमने तो बहुतों को देखा, देवता भी यहाँ आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, असुर भी आते हैं, नाग भी आते हैं, मुनिजन भी आते हैं। ऐसी शोभा हमने कभी सुनी भी नहीं है, देखने की बात तो दूर है। ऐ क्या बात करती हो, तूने विष्णु को नहीं सुना कितना सुंदर विष्णु? नहीं नहीं, विष्णु और तो सुंदर है और उसकी चार भुजा है ना वो बेडोली लगती है। दो तो यूं दो यूं, चार भुजा उसकी बेडोली लगती है। अच्छा बाबा तुमने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है, सारी सृष्टि को बनाते हैं और उनके चार मुख है यूं, वो बेडोले लगते हैं। अच्छा बाबा शंकर भगवान तो कितने हैं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हमारे भगवान शंकर भोलेनाथ। क्या ना बाबा ना, विकट वेश सांप तो यूं बैठा है और गले में न्यारा, यहां न्यारा, कमर में न्यारा और हाथ में त्रिशूल, बड़ा डरावना वेश और नरमुंडियों की माला और फिर उनके किसी के दो किसी के चार, इनके तो पांच मुख है, पांच मुख वाले महादेव जी महाराज बड़े विचित्र हैं। विकट वेश मुख पंच पुरारी, तो सबके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही तो सुंदर होते हैं। अरे तीनों ही राम के सामने फीके हो रहे हैं, औरों की तो बात ही मत करो तुम। यहां भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, देखो तो सही सखी कैसी तो किशोर अवस्था है और कैसा श्याम और गौर इनका शरीर है। ये तो सुषमा के सदन है, शोभा के खजाने हैं ये। इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव, कोटि कोटि शतमाने करोड़ों को सौ से गुणा करो माने करोड़ खरब अरब अरबों कामदेव इनके एक एक अंग के ऊपर बलिहारी जाते हैं। पता नहीं चला सकी कौन आए, कहू सकी अस को तनुदारी कौन है जो शरीर धारण करके आया है। अच्छा ये बताओ ऐसा कौन शरीरधारी है इनको एक बार देख ले और उसको चित्त में न बसाए, ऐसा कौन हो सकता है। इतने में एक सखी उनमें से बीच में बोली, पंचायती करती हुई बोली, प्राय स्वभाव होता है, ए ठहरो ठहरो तुमको क्या पता ये कौन है, मैंने सुना है। तुमने नहीं सुना? अरे भाई हम तो घर के बाहर ही नहीं निकले, हम कहां सुने। अरे जो मैं सुना सो सुना सयानी, अरे देखो देखो सुनो जो मैंने सुना वो तुमको बताता हूं बताती हूं। देखो यहां सयानी शब्द दिया है, सयानी सयानी माने समझदार, तुम बहुत समझदार हो। कि क्या समझदारी, पहचानते तो है नहीं इनको, कहते समझदार समझदार। देखो करोड़ों करोड़ों कामदेव एक एक अंग के ऊपर न्योछावर हो रहे हैं। ये जो इनकी बुद्धि आई है, जिन्होंने राम को देखकर विष्णु को छोटा कर दिया, ब्रह्मा को छोटा कर दिया, शंकर जी को छोटा कर दिया, वो सयाने नहीं तो क्या है, बहुत सयाने हैं। तो कहते हैं तुम सयानी हो, देखो सुनो ये दो दशरथ के दो था, ये दोनों दशरथ जी के बेटा है। हाँ, बाल मरालनी केकल जोटा, ये दोनों दोनों इन दोनों की जोटा माने इन दोनों की जोड़ी ऐसी है जैसे कोई बाल मराल हो, छोटे छोटे हंस हो। छोटे छोटे हंस कितने अच्छे लगते हैं, यूं करते करते गोल गोल मुंह होता है उनका, कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे ये दोनों है। दशरथ जी के बेटा है कि हाँ, यहाँ क्यों आए? अरे सुनो, विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे और वहां आकर उन्होंने कई राक्षसों को मार दिया, और इनमें जो ये श्याम गात कल कंज विलोचन, ये जो श्याम शरीर वाला है ना, इसकी तो क्या बात हुई, उसने मारीच को सुबाहु का घमंड दूर कर दिया। इसकी माँ का नाम कौशल्या है और इसका खुद का नाम राम है। ये तो ये श्याम वर्ण वाला, और गौर किशोर वेशु बर काछे, ये जो बौर गौर वर्ण वाला है ना, सुंदर वस्त्र पहना हुआ गौर किशोर अवस्था वाला, इसके हाथ में बड़ा अच्छा धनुष है, बाण है, जो राम के पीछे भी जब नौका से खड़ा है। इसका नाम लक्ष्मण है, ये राम का छोटा भाई है, और इसकी माँ का नाम सुमित्रा है। और अब देखो, विप्रकाज कर बंधु दो, इन्होंने विश्वामित्र जी का तो यज्ञ ठीक कर दिया, और रस्ते में अपने नगर आ रहे थे तो मग मुनि मधु उधार, अहिल्या का उद्धार कर दिया। आए देखन चाप मखा, ये देखन शब्द का, ये यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। तब सुनी हरसी सब नारी, सब रानी बड़ी हंसी, बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से एक ने कहा, ओहो क्या धनुष को देखने के, यज्ञ को देखने के लिए आए सकी, यही आके सारा काम बिगड़ गया। ये धनुष यज्ञ को देखें क्यों? यहां तो जनक जी को साफ कह देना चाहिए कि बेटी मेरी, प्रतिज्ञा मेरी, मैं मर गया है, मेरी प्रतिज्ञा को यहां रखूं, मेरी प्रतिज्ञा को यहां रखूं, कौन दूसरा बोलने वाला? मैंने प्रतिज्ञा की कि धनुष तोड़ेगा उसको सीता मिलेगी, ये प्रतिज्ञा मैं हटाता हूं। मैंने तो की प्रतिज्ञा, मैं हटाता हूं, मैं मेरी सीता का विवाह इसके साथ करूंगा। पन परिहरी हटी करई विवाह, मैं तो करूंगा इसी के साथ। बोलो कौन क्या करे, कौन बोल सकता है जनक जी के सामने? हमारी दृष्टि से देखा जाए तो जानकी के लिए इससे बड़ा और संसार में कोई बर है नहीं। जनक जी को अभी दिखे नहीं होंगे, क्या बात करती हो, जनक जी जाया है, जनक जी देखे आए, जनक जी ने बड़ा आदर किया। लेकिन जनक जी ने विश्वामित्र जी ये नहीं कहा कि ये दशरथ जी के बेटा है तो हमारी बेटी उसके साथ विवाह कर दो, धनुष यज्ञ हो गया है, ऐसा नहीं कहा, ऐसा तो नहीं कहा। क्यों? सखी परंतु मन राउ न तजई, सखी परंतु पनु राउ न तजई। क्या बताए, ये बड़े आदमी अपना हठ नहीं छोड़ते हैं। विधि बस हटी अविवेक बजई, परम ज्ञानी है हमारे जनक जी महाराज, पर ज्ञानी लोग भी भक्तों के सामने मूर्ख होते हैं, मूर्ख। क्या भक्ति है जनकपुर के अंदर रहने वाली स्त्रियों में, वो कहते हैं विधि बस हट अविवेक बजाई, हमारे जनक जी हट पूर्वक मूर्ख कर रहे हैं। और जनक जी क्या बोलते हैं कि ब्रह्म नेति जो निगम जो पावा, जिस ब्रह्म का ज्ञान मैंने किया है, जिसको नेति नेति से बोलते हैं, उस जनक जी को फटकार के कहते ये मूर्ख है, मूर्ख। अरे ज्ञानी हो गया तो क्या हुआ, प्रेम नहीं हुआ तो वो मूर्खता ही हुई। प्रेम बड़ी चीज है, ज्ञान बड़ी चीज नहीं, प्रेम बड़ी चीज है। ओहो, हमने तो सुना था कि विधाता तो बहुत अच्छा है, सबको यथा योग्य फल देता है। जिसने जनक जी को ऐसी सुंदर बेटी दी है तो जनक जी को ऐसा ही सुंदर जमाई मिलना चाहिए। जो जानकी ही मिले ही बरु एहू, नाही न आल यहां संदेहू। तो विधाता की यहां गलती नहीं है, ये जनक जी तो मूर्खता कर सकता है पर विधाता मूर्ख नहीं कर सकता। जानकी जैसी सुंदरता जानकी में रखी है तो भाई विधाता अब जानकी के योगी बर देगा इसमें सत्य नहीं है। अगर करें क्या भाई, हम तो ऐसी बातें ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। सखी हमरे आरती अति ताते, कबू के आवई यही नाते। हम तो यही चाहते हैं, हम तो दुखी हैं, पीड़ित हैं, यही चाहते हैं कि एक बार राम जी का इनका विवाह हो जाएगा, तब ये अपने ससुराल आने के बहाने से कितनी बार जनकपुर में आएंगे और जनकपुर में आने से दर्शन होते रहेंगे। काबू के आवई यही नाते, अपने ससुराल में किसी इसी नाते से आते तो रहेंगे, नहीं तो भाई ना ही ता हम कहूं सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर, इनके दर्शन कैसे हो सकते हैं। यह संघट तब होई जब, वाह वाह, पुण्य पुरा कृत भूरी। भक्त होता है उसको अपनी भक्ति का घमंड नहीं होता। इनको पता ही नहीं है कि हम ब्रह्म जी के भक्त हैं क्या। भक्त कभी नहीं कहते कि हम भक्त हैं भाई। यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत, भाई और तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, ये यहाँ आते रहेंगे, यही कृपा करके दर्शन दे दें तो ठीक है, नहीं तो हमें तो भाई इनके दर्शन है। इनके दर्शनों का सुयोग भी कब बनता है, जब कोई कितना कितना पुण्य प्राक्तन पुण्य इकट्ठा होता है तब बनता है। दूसरी सखी बोलती है कि देखो यदि हो जाएगा तो इसमें विवाह हित अति हित सब ही का, इसमें सभी का हित है। पर भाई हित हो तो चाहे क्या हो, ये जनक जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने वाले नहीं, और ये जो शिव जी का धनुष है ये अपनी कठोरता छोड़ने वाला नहीं, और इधर ये राम है ये अपने कोमल कोमल हाथ है ये अपनी कोमलता छोड़ने वाला नहीं, सब अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कऊ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा, सब असमंजस ऐसयानी। ये तो सब असमंजस की बातें हैं भाई। जनक जी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते, शंकर भगवान का धनुष कठोरता नहीं छोड़ता, राम जी अपनी कोमलता नहीं छोड़ सकते। या तो राम जी भी कठोर हो जाए एकदम, हाँ आधा धनुष कितना ही कठोर तोड़ देंगे हम, ऐसे कठोर ये नहीं हो सकते। या शंकर जी का चाप एकदम लकड़ी की तरह कोमल हो जाए, यूं करते ही टूट जाए, ये नहीं हो, क्या करे अब। दूसरी ने कहा सुनो सुनो सुनो, तुम क्यों डरती हो। मनुष्य सबसे ज्यादा अपने आप से डरता है, जितना डर होता नहीं है उससे ज्यादा उसका मन ही उसको डराता रहता है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिना मतलब डरता है। इस संसार में तुम देखती नहीं कि छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा काम कर देती हैं। अरे अभी अभी तुम ही तो बोल रही थी सखी कि इन्होंने अपने चरणों से अयोध्या अहिल्या को तार दिया। अब बताओ इतनी बड़ी शिला थी और अहिल्या कितनी पाप की हुई थी, उसका स्पर्श करते ही देखो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा लोक मिल गया उसको। तो ये दिखने में छोटे होते होंगे, बड़ प्रभाव देखत लघु अह ही, प्रभाव बहुत बड़ा है, दिखने में बड़े छोटे हैं। देखो एक बात बताएं, विधाता ने सीता जी को बहुत सुंदर घर के बनाया है, उसी विधाता ने राम जी को भी बहुत सुंदर घर के बनाया, दोनों को बनाया है। और वो विधाता ने इसीलिए बनाया है कि एक सुंदर पुरुष बनाऊं, एक सुंदर स्त्री बनाऊं और दुनिया इन दोनों के विवाह को देखे। ही आहार सही, वाह 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 वाह, हे सखी तुमने तो हमारे जीवन में आशा भर दी। तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो ही कहे मृदुबानी, वाह वाह तेरे मुंह में बाबा घी खांड, ऐसी बात हो जाए तेरे मुंह में घी खांड। ही हर सही बार सही सुमन सुमुखी सुलोचनी बृंद, इस प्रकार से सब ये बातें हो रही थी। इधर क्या हुआ कि राम जी रंग भूमि की तरफ गए, वहां पर यज्ञशाला देखी। ओहो बड़ी विचित्र यज्ञशाला है, बहुत बड़ा वहां पर मंच बनाया हुआ है, कुछ ऊंचा मंच है, कुछ ऋषि मुनियों के लिए अलग है, बड़ा सुंदर वहां पर वो मंच वगैरह देखा। सब शिशु ऐ मिस प्रेम बस पर, इधर छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए, अब उनको राम जी का वो
गुदगुदा शरीर है ना, बहुत अच्छा लगे, वो हाथ बार बार लगे, देखो देखो ये हमारा ये है, देखो देखो ये है, कोई कंधे के हाथ लगाए, कोई यूं बूके के हाथ लगाए, कोई यूं हाथ लगाए, कोई अंगुली पकड़े, देखो देखो यूं। और जो राम जी का स्पर्श करते हैं उनके अंदर करंट सा आता है। सब शिशु एही मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष ये देख देख दऊ भ्रात। राम जी देखते हैं कि इनको हमारे स्पर्श से आनंद मिलता है, वो देखते रहते हैं। अब सब लोग उनको ये दिखाते हैं और राम जी महाराज देख देख करके बड़े आश्चर्य, अच्छा ओह ओह, राम जी आश्चर्य करते हैं, अरे लव निमेश मऊ भुवन निकाया, सुनो पार्वती, क्या एक क्षण में जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों को बना सकते हैं वे भगवान कैसी कैसी एक लुभावनी लीला कर रहे हैं। और देखते हैं कि ओहो ऐसा ये यज्ञशाला है, ऐसी ये जगह है, ऐसी ये, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते देखते भगवान ने सो, अरे सायंकाल हो जाएगा, वो समय हो गया, समय हो गया भाई, गुरुजी के पास चलो, गुरुजी के पास चलो। तो सब आये सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दौ भाई, गुरुपद पंकज नाय सिरु बैठे आय सुपाय। गुरुजी महाराज के पास आ गए, ओहो अच्छा हुआ भाई तुम समय पर आ गए, सायंकाल हुआ, संध्या वंदन किया, फिर भोजन प्रसाद पाए और फिर गुरु महाराज आराम करने लगे तो उनके चरण दबाए। अब दोनों दोनों चरण दबा रहे हैं, गुरुजी महाराज उनको बड़ी इतिहास पुराण की कथा सुना रहे हैं। और ध्यान देओ, फिर गुरु महाराज ने आज्ञा दी, जाओ जाओ बार बार मुनि आज्ञा, जाओ आराम विश्राम करो। तो राम जी महाराज जाकर के सोते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज फिर राम जी के चरण दबाते हैं, पहले तो गुरु जी के दबाए, अब अपने बड़े भाई साहब के दबाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु, कह रहे भैया जाओ तुम बच्चे हो नींद आती, जाओ सो जाओ। क्या लक्ष्मण जी ने नींद लिए हो, पौडे धरी उर पद जल जाता। राम जी महाराज का जो चरण जिधर था ना, वो चरण अपने छाती पर रख लिया और लक्ष्मण जी महाराज ने वो चरणों के लेकर के आराम से वहां पर नींद ली। जय सीताराम 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 सीताराम, जय
सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम,
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम,
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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय
सियार रामचंद्र की
जय
मो मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय
जय जय